जिनके कथानक को आप श्रवण कर रहे हैं, अयोध्या में जन्मे और इस युग के प्रथम चक्रवर्ती के रूप में जिन्होंने ख्याति प्राप्त की और जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। आप बराबर सराहना कर रहे हैं कि भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या नगरी प्रस्थान किया था छह खंडों पर विजय प्राप्त करने के लिए और 7 वर्ष
तक
उन्होंने संपूर्ण 6 खंडों पर विजय प्राप्त की। पुनः रसवाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखने के बाद वे अपनी अयोध्या नगरी में प्रवेश करने के लिए अब प्रस्थान कर रहे हैं और विजय पर्वत नाम के हाथी पर सवार होकर वे निकले। समस्त राजागण देवतागण उनके वश में हो चुके थे। 60,000 वर्ष के दिग्विजय काल में इन्हें 9 निधि 14 रत्न सभी सिद्ध हो गए थे। हाथी घोड़े रथ पदाति आदि के शब्दों से उस समय सारा संसार भरत के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। आदि पुराण के अंदर वर्णन आया कि चक्रवर्ती की वह सेना गंगा नदी के किनारे किनारे अनेक देश नदी पर्वतों का उल्लंघन करते हुए क्रम से कैलाश पर्वत के समीप पहुंच जाती है। कैलाश पर्वत जहां भगवान ऋषभदेव का समो शरण ठहरा है। कैलाश पर्वत केवल भगवान की मोक्ष स्थली ही नहीं है, बहुत काल तक कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव का समो शरण रहा है। जैसे ही कैलाश पर्वत के समीप सेना पहुंचती है, राज पुरोहित याद दिलाते हैं, महाराज भगवान ऋषभदेव का समो शरण नजदीक आ गया है और वे भरतराज स्वयं जिनेन्द्र देव की पूजा करने के लिए पर्वत पर चढ़ते हैं। जैसे सौधर्मेंद्र के पीछे पीछे सभी इंद्र और देवगण चलते हैं, वैसे ही चक्रवर्ती के पीछे पीछे अनेक मुकुटबद्ध राजागण पर्वत पर चढ़ने लगे। कैलाश पर्वत की शोभा को देखते हुए सब लोग ऋषभदेव भगवान के पास पहुंचने के लिए खूब जय जयकारे कर रहे थे। बड़ा सुंदर वर्णन उस समोसरण का है कि चलते चलते भगवान समोसरण की ओर पहुंचते हैं और वहां प्रवेश करते हुए धूलिसाल कोट के समीप पहुंचे। उसके बाद सभी स्थानों का उल्लंघन करते हुए मानस स्तंभ में विराजमान भगवंतों के दर्शन करते हुए 5 कोट चारों वेदियों का उल्लंघन करके वे गंध कुटी के निकट पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि स्फटिक मणि से बना हुआ जो तीसरा कोट है उसके अंदर कल्पवासी देवों से आदर सहित आज्ञा लेकर भरत महाराज ने भगवान की सभा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने चारों ओर से एक श्री मंडप देखा जो 1 योजन लंबा चौड़ा और गोल था, अपने भीतर समस्त जगत को स्थान देने वाला था। इस मंडप में भगवान को 12 सभाएं बनी हुई थी, 12 सभाएं जिनके अंदर देव देवी मुनि मनुष्य आरिकाएं श्राविकाएं और यहाँ तक त्रियंश लोग बैठे हुए थे। पहले कोठे में मुनिगण, दूसरे में कल्पवासिनी देवियां, तीसरे में आरिकाएं और रानी आदि स्त्रियां श्राविकाएं, चौथे में ज्योतिषी देवियां, पंचम कोठे में व्यंतर देवियां, छठे में भवनवासिनी देवियां, सातवें में भवनवासी देव, आठवें में व्यंतर देव, नौवें में ज्योतिषी देव, दसवें में कल्पवासी देव, ग्यारहवें में राजा आदि मनुष्य और बारहवें में शिव मृग आदि पशु ये सब अपने अपने कोठे में बैठे हुए भगवान की दिव्य ध्वनि को अपनी अपनी भाषा में श्रवण कर रहे थे। इन सभाओं को देखते हुए भरत महाराज ने भगवान को तीन कटनी के अग्रभाग पर गंधकुटी में विराजमान देखा। अत्यंत भक्ति से नम्रीभूत होकर के भरत सम्राट जो चक्रवर्ती बनकर के आए थे, सर्वप्रथम उन्होंने जाकर एक एक कटनी की प्रदक्षिणा दी और उसके बाद भगवान को नमस्कार किया, भगवान की खूब फूल फलों से पूजा की। देखो जब चक्रवर्ती बनने जा रहे थे तो भी पहले उन्होंने जाकर के धर्म प्रसाद का सेवन करते हुए भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा की थी। उसके बाद चक्रवर्ती बनकर जब अयोध्या वापिस आ रहे हैं तो भी बीच में भगवान के समोह शरण में जाकर उनकी पूजा भक्ति गुप्त किया, खूब स्तुति की और उनसे कहा, हे भगवान आप परमात्मा हैं, आप अनंत गुणों के धारक हैं, मैं शक्ति से ही हूँ, मैं चक्रवर्ती वैभव से केवल बना हूँ, आप तो वास्तविक चक्रवर्ती हैं जिन्होंने आत्म गुणों की संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। अनेक प्रकार के स्तोत्र आदि पढ़ करके भरत महाराज ने आनंद अश्रुओं से नीचे की जमीन को सिंचित करते हुए, माने जब चक्रवर्ती बनकर के आए, अपने पिता और जगत पिता समोसरण के स्वामी भगवान ऋषभदेव के चरणों में नमन करते हैं, स्वाभाविक है कि उनकी आंखों से आनंद के अश्रु झर रहे थे और उस समय का वर्णन बड़ा रोमांचक है आदि पुराण के अंदर कि उन्होंने अपने आनंद अश्रुओं से नीचे की जमीन को सिंचित करते हुए भगवान को नमस्कार किया। पुनः मुनियों के कोठे में विराजमान प्रमुख गणधर श्री वृषभ सेन जो भरत के ही भाई थे और भगवान को केवल ज्ञान होते ही जाकर समोसरण में दीक्षा ली, मना पर ये ज्ञान के धारी हो गए, उन्हें 84 गणधर में प्रमुख गणधर का पद प्राप्त हुआ। उन गणधर स्वामी को और समस्त मुनियों को नमस्कार किया। उसके बाद आलिकाओं के कोठे में बैठी हुई ब्राह्मी गणिनी माता जो उनकी छोटी बहन थी उनको नमन किया। 60,000 वर्ष का समय बीता था, सबके चरित्र में परिवर्तन आ गया था, लेकिन भाई बहन का मिलन तो मिलन होता है। ब्राह्मी ने भी देखा होगा, सुंदरी ने भी देखा होगा और भरत ने अपने भाई बहनों को मुनि और आरिका के रूप में देखा, आनंद के अश्रु झर रहे थे और तमाम आरिकाओं को नमस्कार किया। उसके बाद मनुष्यों के कोठे में स्वयं बैठ करके चक्रवर्ती का स्थान, प्रमुख श्रोता का स्थान तो उन्हें सबसे पहले ही प्राप्त हो गया था, तो वे समोसरण के प्रमुख श्रोता थे, इसलिए जब वे असमय में भी आए तो तीन काल के अतिरिक्त असमय में भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिल गई। अब कोई कहे ये तो भगवान का अपने पुत्र के प्रति राग भाव रहा, कोई कहे कि अपना पुत्र आ गया या चक्रवर्ती आ गए तो भगवान ने पक्षपात कर दिया, ये पुण्य की बात है। भगवान तो वीतरागी थे, भगवान को किसी से लेना देना नहीं था, लेकिन भवि भागन वस जोगे वसाए तुम धुनि वय सुनि विभ्रम नसाए, भव्यों के भाग्य से असमय में भी केवल ज्ञानी अरहंत भगवान तीर्थंकर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिलने लग गई। वह भगवान के यद्यपि राग भाव और इच्छा का सर्वथा अभाव है, फिर भी ये चक्रवर्ती के पुण्य का नियोग है, यही मानना चाहिए, ऐसा आचार्य जिन सेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर कहा है। ये सब औपचारिकता और भगवान की भक्ति करने के पश्चात भरत महाराज अपने पूज्य पिता को तीनों लोकों के अधिपति भगवान ऋषभ देव को बारंबार नमस्कार करके उनसे पूछकर यानी एक नियोग कि भगवान अब मैं चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके आपकी दी हुई अयोध्या नगरी में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तो अपने निवास स्थान अयोध्या में आने के लिए निकल पड़ते हैं। कैलाश पर्वत से समोसरण से निकल करके अब वे भरत चक्रवर्ती अपनी सेना के साथ साथ प्रस्थान करते हुए कितने ही स्थानों पर कितने ही मुकाम पर ठहरते हुए अयोध्या नगरी के समीप आ जाते हैं। अब इसके बाद के रोमांचक दृश्य आपको सुनते रहना है, क्योंकि अयोध्या आने से पहले उनका चक्र रत्न रुकता है और कैसे कैसे क्या समय आते हैं। इस युग में चक्रवर्ती का पराभव होता है, ये सारा रोमांचक कथानक आप आदि पुराण के आधार से और इस सुंदर सी पुस्तक भरत का भारत, ये एक छोटा सा उपन्यास है लेकिन इसके अंदर सारा इतिहास और भूगोल भरा हुआ है। कैसे कैसे उन्होंने दस दिशाओं को जीता, कैसे उन्होंने छह खंडों पर विजय प्राप्त की, कैसे उनके वश में सारी समुद्र और नदियों के देवतागण भी हो गए, लेकिन अपनी नगरी में आकर उनको क्या कुछ झेलना पड़ता है, इस कथानक को आप आगे श्रवण करते रहें। यही आप सबके लिए प्रेरणा है, नित्य प्रति स्वाध्याय सुने और स्वाध्याय को करने से सुनने से अपने संशय की गुत्थियां सुलझती हैं, ज्ञान की वृद्धि होती है, अज्ञान का विनाश होता है। बैठे बैठे दो घंटे के अंदर आप इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं और इस उपन्यास को पढ़ने के बाद संसार की लीला से अगर कोई अवगत नहीं हुआ तो समझो भरत का भारत पढ़ा नहीं। आदि पुराण के एसेंस को एक गुलदस्ते के रूप में पूज्य माताई ने इस उपन्यास के अंदर भर दिया है। मैं कहती हूँ कौन सी शक्ति है ऐसी जिसने समुद्र का मंथन कर डाला। कहते हैं समुद्र के मंथन के बाद अमृत निकला था, ऐसे ज्ञानमती माता ने जो अमृत निकाला वह 500 ग्रंथों के अंदर भर दिया। और उन ग्रंथों को जब हम एक एक को पढ़ते हैं, मैंने यह उपन्यास देखा तो लेकिन बारीकी से पढ़ने का मौका अब आया, बहुत ही अच्छा लगा आपको भी, इसीलिए मैं इसका स्वाध्याय करा रही हूँ। इस भरत भगवान के चरित्र को सुनते सुनते आपको भी भरत भगवान के समान भेद विज्ञान की प्राप्ति हो, यही भगवान भरत से इच्छा है, अभिलाषा है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। जलो चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय।